जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है वे भक्त हाथों की उंगलियां नोकें आमने सामने मिलाकर हाथ गोद में रखेंगे। 45 साल से कम है, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, तीन उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, हरि नाम का थोड़ा सा स्मरण करते हुए उस अकाल पुरुष में, उस परमेश्वर में तनिक शांति पाए। रियो परमात्मा शांति श्री हरिओ वा मुंजा बाचारा साईं फिरत प्रभु आयो परियो तो शरणाए नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। अनेक माताओं के शरीर में, अनेक पिताओं के शरीरों में से पसार होते आए फिरते आए, अनेक जन्मों में अनेक कर्मों में फिरते आए। हे मेरे परमेश्वर, अब तू अपनी भक्ति का दान दे दे। हे दिल में छुपे हुए दिलबर, अब दिलबर तेरे दीदार और तेरे विश्रांति का दान दे दे। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। जन्म जन्म भरमंदो आयो ही जीव, आणु अंतर आयामी परमेश्वर हरिये में शांति पाए, तो सबनी दुखन का छुटकारो, सबनी कर्म बंधन का छुटकारो, सबनी वासनाओं का छुटकारो, निर्वासनिक नारायण जी सुख में गो तुम्हार मुझा मिठा मुझा अदा मुझे अदड़ू मेनरू। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे, हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात सत, है भी सत नानक हो से भी सत। उन सत्य स्वरूप में थोड़ी देर शांति माण्यो, थोड़ी देर शांति पाओ। रियो बहो रा अश्वमेघ सहस्त्राणि अश्वमेघ सहस्त्र बाजपे शतानि च बाजपे शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च शुक शास्त्र
छायाश्च
कलानाहन्ति षोडशम्
कलानाहन्ति
हजार अश्वमेघ यज्ञ कर ले कोई, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ कर ले कोई, लेकिन भगवत कथा के आगे उनका पुण्य प्रभाव सोलमा हिस्सा भी नहीं। भगवत कथा की महिमा अपरंपार है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिन्होंने अपने कान से भगवत कथा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। जिन्होंने अपनी जीवा से भगवान नाम उच्चारण नहीं किया, उनकी जीभ है मेढक के जीभ जैसे। शास्त्र कहते हैं, हजार अश्वमेघ यज्ञ सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल भगवत कथा के आगे सोलमा हिस्सा भी नहीं है। उपनिषदें कहती हैं, स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसके द्वारा सारा दान पुण्य कर्म संपन्न हो गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ संपन्न हो गए। येन क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए भी उस अकाल पुरुष में, उस पर ब्रह्म परमात्मा में अपने मन को स्थिर किया है, ऐसे पुरुष की निगाह भी मिल जाती है तो सामान्य मनुष्य का जीवन पावन हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावई। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। दुनिया का सर्वोपरि विज्ञानी, विश्व का श्रेष्ठ विज्ञानी सूर्य विज्ञान पर सुंदर सफलता पाने वाला, जैसे नक्षत्र विज्ञान, सूर्य विज्ञान, भूमि विज्ञान, तमाम प्रकार के विज्ञान है। ये सूर्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, भूमि विज्ञान और तमाम प्रकार के विज्ञान जिस ज्ञान स्वरूप आत्मा से सिद्ध होते हैं, उस आत्मज्ञान का जो अमृत है, उस अमृत का आस्वादन करने कराने वाले ब्रह्मज्ञानी कहे जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी सारे विज्ञानियों की पराकाष्ठा है। भारत का प्रसिद्ध विज्ञानी सूर्य विज्ञानी भरद्वाज हो गए, जैसे सूर्य के किरणों का उपयोग करके सोलर बोलर खोजे गए हैं, ऐसे ही सूर्य के सप्त रंगों में से आसमानी रंग और एक काला रंग का द्रवीभूत करके विमान उड़ाया जाता था, और वो जहाज कलाक में 1000 माइल की गति वाला, 2000 माइल की गति वाला और 20,000 तक की माइल की गति वाले जहाज भरद्वाज ने खोजे। कर्दम ऋषि ने योग शक्ति से काम आख्या एक विमान बनाया, जो हर मौसम में अनुकूल जल में चल सके, थल में चल सके और गुरुत्व आकर्षण नियम के पार भी जा सके। काम आख्या एक विमान में उन्होंने अपना गृहस्थी जीवन जिया। भोजनशाला अलग, शयन खंड अलग, विहार करने की जगह अलग, बाग बगीचे भी, और उस विमान के जो पक्षी थे वे पक्षी ब्रह्मा जी की सृष्टि के पक्षी उनके साथ आकर के लोल करते थे। कर्दम ऋषि ने अपनी सती साध्वी जैसी मनु महाराज की पुत्री देवहूति से विवाह किया था। देवहूति
पति परायणा पूछ पूछ कर सेवा नहीं करे, पति को कौन सा आहार अनुकूल पड़ेगा, पति को इस वक्त कौन सी बात से उत्साह आनंद और उमंग आएगा, पति का जीवन अपने लक्ष्य में और उन्नत कैसे होगा, ये सब जानती थी। पति की मानो वो अंतर्यामी थी। उत्तम स्त्री की पहचान है कि पति की अंतर्यामी हो जाए। उत्तम सेवक की पहचान है कि स्वामी का अंतर्यामी हो जाए। उत्तम भक्त की पहचान है कि भगवान का अंतर्यामी हो जाए। और उत्तम शिष्य की पहचान है कि गुरु का अंतर्यामी हो जाए, कि गुरु किस बात पर किस वक्त क्या दिया जाए। बाला और मर्दाना का नाम क्यों आता है, भाई बूढ़े का नाम क्यों आता है, विवेकानंद का नाम रामकृष्ण के साथ क्यों जुड़ गया, वो गुरु के अंतर्यामी हो गए। ऐसे वो पति की अंतर्यामी देवी थी। एक छत्र सम्राट मनु महाराज वृक्ष के नीचे बैठे कर्दम ऋषि को अपनी कन्या बिहा के दे गए, और ऐसी कन्या ने सेवा की कि कर्दम ऋषि का योग सिद्ध हुआ। वर्षों बीत गए, जब समाधि सिद्ध हुई तो कर्दम पूछते अपनी पत्नी को कि देवी तुम कौन हो, कैसे रही होगी संयम से, कैसे रही होगी सेवा में। कर्दम पूछते देवी तुम कौन हो, बोले मेरे पिता माता कन्यादान करके गए थे आपके चरणों में, मैं वही देवहूति हूं। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, तुमने तो अपनी काया को सुखा दिया है। बोले देव मिटने वाली काया अमिट ईश्वर के लिए काम आ जाए, पत्थर की मूर्ति में श्रद्धा करने से मनोवांछित फल मिलता है, तो आप तो जागृत मूर्ति हैं और पति परमात्मा स्वरूप हैं, आपकी सेवा में मैंने थोड़ा सा कष्ट सह लिया तो क्या है। ये भारतीय संस्कृति पत्थर में भगवान प्रकट करा सकती है, तो पति में छुपे हुए भगवान के द्वारा भी बहुत कुछ प्रिय और आशीर्वाद और मुक्ति दिला सकती। देवी अब तुम मेरे साथ विवाहित तो हो गए हो, लेकिन पेड़ के नीचे गृहस्थी जीवन तो नहीं जिया जाएगा। मुझे योग शक्ति से जो मिला है उसमें आधी तुम भागीदार, जो मुक्ति मुझे मिले वो तुम्हें भी मिलेगी। वे पति महामूर्ख हैं जो अपनी पत्नी को भगवान की साधना से रोकते हैं, और वो स्त्रियां महामूर्ख हैं जो पति को रोकती, क्योंकि जो भगवत साधना करता है उसकी उन्नति होती तो अर्धांगनी को हिस्सा मिल जाता है, अर्धांगनी की उन्नति होती है तो पति को हिस्सा मिल जाता है। जैसे डायनामो घूमता है ऊर्जा बनती है, ऐसे जो जप करते हैं सत्कर्म करते हैं ध्यान करते हैं उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है, प्राण शक्ति और आध्यात्मिक विद्युत शक्ति, ये जितनी जीवन में ज्यादा उतना वो ऊंचा व्यक्ति। सामान्य व्यक्तियों के जीवन में प्राण शक्ति और विद्युत शक्ति 2-3% होती है, गया बीता गया गुजरा जीवन बिताते हैं, आटा दाल रोजी रोटी में ही खप जाते हैं। कुछ लोगों की प्राण शक्ति जीवनी शक्ति 4-5% डेवलप होती है, जाने अनजाने समाज में उनका कोई कुछ ऊंचा स्थान होता है। आइंस्टीन जैसे ने अपनी प्राण शक्ति जीवनी शक्ति 10% जगाने में सफलता पाई और रिसर्च की दुनिया में लगाए और प्रसिद्ध हो गए। गांधी जी ने प्रतिदिन प्रार्थना और राम नाम के रटन से अनजाने में वह प्राण शक्ति का कुछ हिस्सा जगाया, 40 करोड़ के तारणहार हो गए। बालिया लुटारा था, नारद जी ने मंत्र दीक्षा दी और बालिया लग गया प्राण शक्ति और जीवन शक्ति जागृत करते करते इस केंद्र तक पहुंचा। अनहद सुनो बड़ भागियां सकल मनोरथ पूरे। जिसके जीवन में जितनी प्राण शक्ति ऊर्जा उतना उसका जीवन महत्वपूर्ण है। इस योगी ने प्राण शक्ति को खूब जगाई, जीवनी शक्ति पर इनकी कमांड थी। चलो देवी पतली डुबली हो, सरोवर में स्नान करो, खूबसूरती तो तुम्हारी अपनी है, लेकिन स्वास्थ्य और वस्त्र सहित तुम निकलोगी। योग शक्ति से दृष्टि डाल दी, पतली हड़पिंजर सेवा करके हो गई, देवहूति सरोवर में नहाने को गई, सजी दजी महारानी होकर आई। कर्दम ऋषि ने प्रवेश किया और दुल्हा जैसे रुष्ट पुष्ट होकर आ गए। अब हम स्वस्थ तो दुल्हा दुल्हन जैसे तो हो गए, लेकिन घर भी तो चाहिए। काम आख्यक विमान बनाया, उस विमान में वर्षों तक रहे और 9 कन्याओं को जन्म दिया। सती अनुष्या का विवाह कराया, जिससे भगवान दत्तात्रेय जन्मे थे, जयराम जी की। अरुंधति का विवाह किया, जो वशिष्ठ महाराज को दी, और राम की गुरु माता बनी। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह करा दिया। कर्दम ऋषि ने देखा कि इतना सारा कुछ हुआ, लेकिन आखिर ये जगत तो बदला बदली, दुनिया का क्या रिवाज है? लो और दो छोड़ो नया लेने के लिए, और नए को भी छोड़ो नया लेने के लिए। ये सारा संसार ग्रहण और त्याग के चक्र पर है। एक होता है समझ कर कोई त्याग करे, दूसरा जबरन त्याग कराया जाता है। मां की कुख का त्याग किया, तब खुला आकाश खुली हवाएं मिली। अगर मां की कुख को पकड़े रहता बच्चा, तो खुला आकाश खुली हवाएं और खुला जीवन नहीं मिलता। शिशु अवस्था का त्याग किया, तब किशोर अवस्था आई। किशोर अवस्था का त्याग करते जवानी आई। जवानी अपने आप चली जाती है, बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे को भी पकड़ रखेगा तो चिंता होगा, बुढ़ापा भी एक दिन पूरा हो जाए। ये जगत अदला बदली है। धरती को धरती लेती है अन्न, जौ ज्वार कुछ लेती है और सजा सवार कर देती है। वृक्ष पानी लेता और जड़ों से खुराक लेता है, फल फूल और लकड़ियां आदि देता है। इस संसार एक यज्ञशाला है, लो देने के लिए। अगर खुशी से कोई देता है तो ईश्वरीय भक्ति और पूजा और उन्नति हो जाती है, नहीं तो जबरन उनसे छुड़ाया जाता है। अगर शरीर में ममता छोड़ दे और आराम से रहे तो आनंद है, लेकिन शरीर थोड़ा सा बीमार बूढ़ा हुआ ऐ करने लगा तो बीमारी और बूढ़ापा ज्यादा आ जाएगा। आया है खर्च किया तो ठीक है, नहीं तो इनकम टैक्स वाला जबरन ले जाता है, कोई पैसे भी ले जाता है। ये जीवन की नींव क्या है? लो और दो, लो और दो। दो इसलिए कि नया ले सको। कल का तुमने खाया है वो अगर नहीं छोड़ो तो आज नहीं खा सकते हो, जयराम जी की। अभी का जो पकड़ा है वो नहीं छोड़ोगे तो दूसरा पकड़ नहीं सकोगे। ऐसे ही ये जीवन त्याग, ग्रहण और त्याग, ग्रहण और त्याग, ग्रहण और त्याग करते करते ऊपर उठते उठते जिसकी शक्ति से ग्रहण त्याग होता है, उस चैतन्य आत्मा को मेरा स्वरूप जानकर मुक्त होने के लिए है। जहाज में कब तक घूमेंगे? कितना बड़ा सिद्ध योगी है भगवान वशिष्ठ, जिसके जमाई है दत्तात्रेय भगवान, जिसका दोता है कपिल भगवान, जिसका पुत्र है, और एक छत्र धरती का सम्राट मनु महाराज, जिसका ससरा है। और तो महाराज क्या बताऊं, मनु महाराज राजा होते हुए भी इतने ज्ञानी और महान थे कि भरद्वाज ऋषि, जिसने सूर्य विज्ञान पर पहला कमांड पाई थी, 1 घंटे में 20,000 माइल की गति से जहाज चल सके, अभी विज्ञानी उसके शास्त्र पर अनुसंधान करके कुछ कुछ समझ रहे हैं और बड़ी संभावनाएं बता रहे हैं। ऐसा भरद्वाज उनसे ज्ञान लेने गया था मनु महाराज से, और वो मनु स्मृति बनी। ऐसे मनु महाराज चलकर पेड़ के नीचे बैठे हुए कर्दम ऋषि को अपनी कन्या अर्पण करके चले जाते हैं। कैसी महिमा है योग की, कैसी महिमा है ज्ञान की। लेकिन इस योगी ने ज्ञानी ने त्याग और ग्रहण के नियम को भी प्रत्यक्ष दिखा दिया। पत्नी को कहा कि देवी अब मैं जाऊंगा एकांत में, जिसके लिए जीवन मिला है उस जीवन दाता को, ब्रह्म को पहचानना, मुक्त हो जाना है। मौत आकर बलात् से गला दबोच ले, उसके पहले शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं। चमड़ा बदलता है, चमड़े का रंग भी बदलता है, मांस भी बदलता है और मांस पेशियां भी बदलती, चांद बदलता है, सितारे भी बदलते, दरिया बदलता है, दरिया के किनारे बदलते, यहां सब अदला बदली का मेला है। उस अदला बदली के मेले को जानने वाला जो साक्षी स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, उस आत्मा को जानने के लिए मैं अब ग्रह का त्याग करता हूं। आपके पास है क्या? कल्याण में एक दो फ्लैट होगा, वरी और क्या होगा यार? मुंबई में मूलजी देसा मार्केट में 5 दुकान हो गए, फिर क्या हो गया? एक छत्र सम्राट जो वो भी देखता है कि आखिर राम गयो रावण गयो, ताको बहु परिवार, कह नान कथिर कछु नहीं, सपने जो संसार। जो बीत गया उसको याद करके रो मत, जो छूट गया उसको याद करके सुकड़ो मत। ये छोड़ना और ग्रहण करना ये संसार का नियम है। पीछे का धरती छोड़ते हो तब आगे कदम रखते हो, और आगे कदम रखा हुआ भी जब छोड़ते हो तो और आगे जाते हो। जो लोग रो रहे कि अरे यार पहले तो ऐसा था अभी ऐसा, अरे यार दो बूढ़े आपस में मिले 40-50 साल के बाद, अरे यार मैं तो बन मद्रास में सेट हो गया। दूसरे ने कहा हम दोनों साथी थे, मैं यार दिल्ली में सेट हो गया, ये तो बाबा की कथा में हम बैठे और मुलाकात हुई। क्या था जमाना, जवानी का तूफान था, कई तरंगे थी, ये कर लेंगे, ये पा लेंगे, ये जान लेंगे, ये शादी करेंगे, बेटे करेंगे, ऐसे बनेंगे, मैं डॉक्टर बनूंगा, यार मैं डॉक्टर बन गया, देखा कि मैं अपनी क्लिनिक करूंगा, कर दी, मैं अपना नर्सिंग होम खोलूंगा, यार खोल दिया। लेकिन अब बुढ़ापे में देखा तो सब हवा हो गया, सब सपना हो गया, सब मिट्टी में मिल गया यार, सब ख्वाब हो गया। जिन बेटों के लिए पसीना बहाया और कूड़ कपट किया, उन बेटों को संपत्ति दी, अब सामने भी नहीं देखते। वो कहता है यार तू अकेला नहीं, मेरा भी वही हाल है, मैं भी इंजीनियर बना और चीफ इंजीनियर बना, गवर्नमेंट की नौकरी भी बनी, बड़े बड़े कॉन्ट्रेक्टर मेरे घर पे चक्कर लगाते थे, लेकिन अब तो चपरासी भी मेरे सामने नहीं देखता है क्योंकि बुढ़ापा हो गया, अब तो कोने में पड़े यार। संसार कोई सार नहीं, वही बच्चा था कि मां, मां के बिना 10 मिनट उसके लिए भारी पड़ते थे, 1-1.5 घंटा मां चली गई तो दूध पीने वाला बच्चा रोता था, मां 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 मा, लेकिन जब बच्चा दूध की जरूरत नहीं रही, बड़ा हो गया और मां की जीवन शक्ति शरीर में दूध बनाने के काबिल नहीं रही, मां बुढ़िया हो गई, तो जो 1 घंटा मां की गोद के बिना नहीं रहते थे, अब 10-10 दिन मां का मुंह देखने ले जाते। ये संसार तो अदला बदली है यार। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट 22% सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जवान समझते हैं क्या क्या तरंग उठती है, क्या क्या लहर उठती है, मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सेठ बनूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। एक लड़का कुछ ठीक ठीक हो रहा था किशोरावस्था, बाप ने कहा बेटा तू शादी करेगा? बोले शादी तो मैं करूंगा। तो बेटा बारात में किसको किसको ले जाएगा? बोले मोहन को ले जाऊंगा, फलाने को ले जाऊंगा, किशोर को ले जाऊंगा, और मेरी बहन को ले जाऊंगा, मेरे छोटे भाई को ले जाऊंगा। बाप ने पूछा बेटा मेरे को ले जाएगा कि नहीं? बोले तुमको तो कभी नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों? बोले तुम्हारी शादी में तुम मेरे को नहीं ले गए तो मैं तुमको कैसे ले जाऊंगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। लेकिन वो बुद्धि भी बदल गई यार, वो शरीर भी बदल गया, और तोतली मोतली भाषा भी बदल गई, बुद्धि भी बदल गई। अब तो हम बूढ़े हो गए, संसार ऐसे ही है। ऐसा करके वो दोनों बूढ़े दुख रो रहे थे। इतने में सत्संग की बात याद आ गई, दोनों ने एक दूसरे को ताली मारी। यार सब बदल गया तो बदल गया, लेकिन एक चेतन तो नहीं बदला। जो नहीं बदला वही अपना आत्मा है, बाकी तो जगत है। अदला बदला, यह भी बदला, वह भी बदला, दिन भी बदला, रात भी बदला, सुबह भी बदली, शाम भी बदला, गरीबी बदली, अमीरी बदली, मित्र भी बदले, शत्रु भी बदले, तन भी बदला, मन भी बदला, लेकिन एक अकाल पुरुष साक्षी चेतन नहीं बदला, वही तो अमर है और उसी की यात्रा सार है। उसकी यात्रा सार ये कथा से सुना था, इसलिए उस सार में थोड़े विश्रांति पाए। भागवत में कथा थी कि विदुर जी यात्रा करते जब लौटे हस्तिनापुर, युधिष्ठर ने उनको देखा और बड़ी आगता स्वागता की कि काका विदुर जी, जैसे पक्षी अपने पंखों से बच्चों को पोषता है, ऐसे आपने हमारा पक्ष लेकर पक्षी की नाई हमारा पोषण किया। कहां तो हमको लाक्षाग्रह में जलाने का प्लानिंग, और आप ही ने हमारा पक्ष लेकर हमारी रक्षा की थी। आपने हमारे जीवन में कदम कदम पर हमारा पक्ष लेकर हमारी रक्षा की थी,
हम आपके बड़े आभारी हैं।
और सब विदुर जी ने बात बताई, लेकिन द्वारका में यदुवंशियों ने अपनी यात्रा पूर्ण कर ली, श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, ये दुख की बात नहीं बताई। दुख की बात किसी को जल्दी से नहीं बतानी चाहिए, और बताओ तो उसका दुख बढ़े ऐसे ढंग से न बताओ मानो किसी के बेटे का फ्रैक्चर हो गया है और आपको बताना है। तो भाई फलाना मैं, हेलो क्या कौन के फलाना भाई, अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम बोले भाई कहिए कहिए। बोले बात तो कोई खास नहीं है, संसार है, कई जगह पर हवाई जहाज एक्सीडेंट होते, हड्डी पसली भी मिलती नहीं, कई जगह पर बम ब्लास्टिंग होते, आग लगती, कई लोग मर जाते हैं। ये संसार है, आत्मा तो अमर है, शरीरों में तो ऐसा होता रहता है। लेकिन भाई तुम क्या बोलना चाहते हो बोलो। नहीं बोले, हम ये बोलना चाहते हैं कि आपके तो लोगों का तो एक ही बेटा होता है और एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन आपके तो तीन बेटे हैं, दो तो खुश घूम रहे, तीसरे को थोड़ा सा देखो तुम। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे मैं नहीं बताता, आप में सहन शक्ति नहीं, आप हिम्मत करिए, जरा सी बात सुनो, आप मेरे को वचन दो कि आप दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, तो मैं बताऊंगा। बोले अच्छा बताओ बताओ, आपके बेटे का दायां पैर ठीक है, दायां हाथ भी ठीक है, दोनों आंखें भी ठीक है, सिर भी ठीक है, खाली बाएं पैर में, क्या क्या बाएं पैर में? अरे बाएं पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ, बाकी सब ठीक है, आप दुखी ना होना, उपाय करना। आपने उसको दुख की बात तो सुनाई, लेकिन दुख सहने की शक्ति दे दी, आपने एक यज्ञ कर दिया, पुण्य कर्म कर दिया। कुछ लोग ऐसे भोले होते हैं कि परिश्रम की कमाई से और बहुत यत्नों से संबंध जोड़ते हैं, लेकिन बात करने का ढंग न होने के कारण तू तड़ाके की बात करके मेहनत और परिश्रम से उपयोगी संबंध झटके भर में तोड़ देते हैं। कितरन के वरी आदत हो गया टोकबाजी करने, यहां तक कितरन के आदत हो गया प्यार होना, यार छा कर धंधो ही मंदो यार ही कर, अरे यार ही ऐसा यार खंग थी भैया खंग चंदी हाने ते ही रहा ही मोढ़ जे तो है घर में ठीक है मुझे क्रेडिट, अरे थी तो थी अंगूठे थे खंग थी तो पैंजो फुला बुला खा धाणी बाणी खा ठीक थी वेंदे, पर यार रत कमजोरी थी वया, अरे कमजोर रत रत जी कमी थी वया, टमाटन जो सुबह नाश्तो कर यार, यार खून खराब थी यार टमाटा खा, यार डायबिटीज थी यार टमाटा खा, यार शरीर में थकान थकान थोड़ो टमाटन जो रस पीअंदो कर, टमाटा पथरी जी बीमारी में टमाटा न खाए, बाकी टमाटा तो आहा दिसण में गाढ़ा गिटी कन में गाढ़ा गिट यार वी टमाटा 500 ग्राम वही खाने लगो, अरे मांदे तो करी यार साई साई चो टमाटा खाजन अध किलो खाई छड़ा न 50 ग्राम खा वो 60-80-100 वध में वध 200-250 ग्राम टमाटे या टमाटे जो जूस ये टमाटे जो जूस शरीर रखे पुष्टि तो दे, ये सत विचार ऐं सत्संग तवां के पुष्टि तो दे, ऐं तां के लालम लाल तो करे छदे। यो सत्संग अपरंपार कल्याणकारी है। एक एक कदम चलकर ब्रह्म ज्ञान की कथा में जाते, एक एक यज्ञ करने का फल होता है, श्रद्धा से बैठकर सुनते भक्ति योग का फल होता है, और ज्ञान तो ऐसे ही मिलता है। ज्ञान योग का फल, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों योग एक साथ में हो। यज्ञ करने में तो विदुर यज्ञ नहीं कर सकता है, जिसकी पत्नी मर गई वो यज्ञ में नहीं बैठ सकता, विधवा माई यज्ञ नहीं कर सकती है, काणा और कोढ़ी यज्ञ में नहीं बैठ सकता है, और यज्ञ जो करते वो तो धुआं चाटे, ताप सहे और भविष्य में पुण्य मिलेगा, और पुण्य को भोगेगा तभी सुख मिलेगा और अंत में स्वर्ग शीघ्र आ जाएगा। लेकिन सत्संग में तो मेहनत तो संत करे और कानों के द्वारा अमृत रस अपने को मिले, कोई भी आए और सबको महायज्ञ का फल मिल जाए, ये सत्संग की महिमा अपरंपार है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मैं पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। गाय सारा दिन घूमती है, मेहनत से शरीर में दूध बनाती है, लेकिन बछड़े के आगे तो तैयार दूध, उसके शरीर का दूध स्तनों में आ जाता है, और बछड़े को तो खाली धावन करना पड़ता, कभी कभी फेंटा मारना पड़ता है। इन संत ने अगले जन्म में, इस जन्म में जो साधन भजन किया, और जो क्रीम क्रीम योग वशिष्ठ का, उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, ध्यान का, यज्ञ का, जप का, तप का, जो जो सार पाया, ईश्वर को पा लिया, ईश्वर को छूकर संत की वाणी आती है, और श्रोता रूपी बछड़े को तो फेटा भी नहीं मारना पड़ता, सीधा कान में उतर के दिल दिमाग को पावन कर देती। अहमदाबाद बंबई के रूट पर मियां गांव स्टेशन आता है। मियां गांव से थोड़ा सा उधर नर्मदा किनारे रंगावदूत महाराज हो गए एक संत। बंबई के कुछ लोग जाते पैदल पैदल रंगावदूत के दर्शन करते नर्मदा किनारे। कई वर्षों से ये सिलसिला चला पैदल यात्रा गुरु के दर्शन करने। एक दिन उन्होंने कहा कि बाबा जी, बेटे तो बाप के पास आए, लेकिन बाप को भी बेटों की खबर लेने आना चाहिए। प्रार्थना करते करते तारीख तय हुई, रंगावदूत महाराज ने बंबई में आने की हां बोल दी। बाबा जी 6 बजे वहां से कार में बैठेंगे, 12 बजे सत्संग हाल में बाबा जी का दर्शन सत्संग होगा। लोग कोई 11 बजे आए, कोई 12 बजे आए, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई आए फिर चले गए, कोई आधी तारीख भर के आए, कोई साइन करके आए। बाबा जी शाम को 5:30 बजे तब तक नहीं। सत्संग हाल सजाया धजाया था, 1,000-1,500 आदमी पैक हो जाए ऐसा बढ़िया व्यवस्था भी की थी। होते होते शाम के 6 बजे और बाबा जी आए, मंच पे बैठे, रंगावदूत महाराज की जय, सतगुरुदेव की जय। महाराज ने कहा, अच्छा भाई तुम्हारी इच्छा थी हम आ जाए आपकी बंबई में, हम आ गए। अच्छा, राम राम, हम जाते हैं। आयोजकों का तो दिल धड़कने लगा, महाराज क्या करते, 2-2, 3-3 वर्ष तक तो प्रार्थना की और आप आए तो 6 घंटे लेट। ये लोग 6-6 घंटे से बैठे, कोई सुबह 10 बजे से बैठा कि आगे बैठू, अज्ञान व्यान अभी कुर्बानी करनी बन गया। जयराम जी की इन्हन का पूछी दसो जे के बगिया बैठे ने मायू मावा बिचारियों 6 बजे ने 5 बजे आई हूं, क्योंकि 5:30 आई हूं। जयराम जी की, तो ये सब बैठे हैं महाराज, कोई 3 घंटे से बैठा है, कोई 6 घंटे से बैठा, कम से कम आप 2 घंटे तो बैठो। महाराज ने कहा, तुमको संत का दर्शन हो गया? बोले हाँ हो गया। तुम मेरे को संत मानते हो? बोले हाँ महाराज, आप संत हैं। महाराज ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं घर छोड़ा भटकते भटकते, मुझे 7 साल के बाद ब्रह्मज्ञानी गुरु का दर्शन हुआ, तुमको तो 6-7 घंटे के इंतजार में ही ब्रह्मज्ञानी का दर्शन हो रहा है। यू आर लक्की मोर देन मी, आप मेरे से ज्यादा लक्की हो, भाग्यशाली हो। उन दोनों बूढ़ों को ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संग की बात याद आई, आखिर वे बूढ़े ताली लगाकर हंसने लगे, गाने लगे। जन्म भी बदला, गमन भी बदला, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला, एक चेतन ना बदला है। ये जग तो अदला बदली है, एक आत्मा ना बदला है, वही अमर आत्मा हम है यार। अब फिकर फेंको कुएं में, संसार का ये नियम है, लेके दो लेके दो लेके दो। जो लेके देने का नियम नहीं जानते वो जबरन पकड़ रखते और उनसे जबरन छुड़ाया जाता है। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। विदुर ने कहा कि हमने ये यात्रा की, ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन संसार सब बदला बदली का था। वो दिन थे कि तुम बालक थे, वो दिन थे तुम युवान थे, और वो भी दिन थे कि वो समझौता नहीं कर रहा था, अपनी डिंग हाँक रहा था। दुर्योधन शाकुनी उसके साथ कुड़ कपट करके आपको लाक्षाग्रह में भेजा, लेकिन सपना हो गया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत स्वप्न सपना। इस संसार में परिवर्तन होता ही रहता है, बदलाहट होता ही रहता है, लेकिन इस बदलाहट को जो देखता है वो अबदल आत्मा है। वे भी याद करो के चॉकलेट कंधा हिंजर डाढ़ी मुछू रखी मैंने पेंटू बेंटू पाए भाई थी प्या घूमू, लेकिन वो दिन भी तो थे। एक बिस्किट के लिए हंस रहे थे रो रहे थे, एक चवन्नी के लिए दुखी सुखी होते थे, क्योंकि बच्चे थे। जैसे उस दिन की बुद्धि बच्चा था और रो रहे थे, ऐसे जगत की चीजों के लिए अगर दुखी होता है या खुश होता है तो अभी भी बच्चा है। जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो बोलेगा ये भी एक चॉकलेट लॉलीपॉप। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जस्त जो है, हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है। कर्तव्य करो, मेहनत करो, उत्साह से पुरुषार्थ करो, ठीक पाओ, ठीक रखो, ठीक उपयोग करो, लेकिन फिर अंदर से समझो कि मूल शक्ति परमात्मा है, वही मेरा आत्मा है। माँ के शरीर में बल था, हमारे उपयोग में आती थी, हम माँ के लिए तड़पते थे। माँ का शरीर निर्बल हुआ, हमारे उपयोग के काबिल उसके शरीर नहीं रहा और हम अन्न जल खा रहे हैं, माँ को कौन पूछता है। ये सारा जगत उपयोगिता से बंधा है, जय राम जी की। अब माँ आंसू बहा के देखो, वो मेरे बेटे थे, आधा घंटा मेरे सिवा नहीं जीते थे, अब देखो 10-10 दिन तक मेरे को नहीं मिलते। माँ को रोना नहीं चाहिए, माँ समझे इन्हें जो नालो ही संसार है, जयराम जी की। बाप भी यही समझे कि इसी का नाम संसार है, पत्नी भी यही समझे कि इसी का नाम संसार है, पति भी यही समझे इसका नाम संसार है। तुम फरियाद मत करो, तुम इसमें से ज्ञान ले लो, जयराम जी की। छा कर यार पेरी तो डाटो मुझे पुठिया पुठिया घूम दो, हाँ वरी बपे साथी व्यास समूह ही न तो जाने। अरे हूँ छा तो करी पैंजो दिल छो तो तब इन्हें जो नालो संसार है, तुम पैंजे दिल में दिल भर के याद कर। पार्वती जी को शिव जी ने कहा कि तेरे पिता ने तो मेरी बेइज्जती करने के लिए यज्ञ किया है और जानबूझ के आमंत्रण नहीं दिया है। भूल से अगर वो आमंत्रण देना भूल गए तो आप जा सकती है, लेकिन ये तो जानबूझ के कर रहे हैं तो क्यों जाना। पार्वती ने कहा कि आप तो पुरुष है, मैं तो महिला हूं, हम तो स्नेह प्रधान होते, मेरी बहनें आई होंगी, मेरे जीजाजी आए होंगे, मेरी माँ, मैं तो माँ तो वन्या हेडा मुखे मोकल दो ना, माँ तो माते वन्या। शिव जी ने कहा भाई जब तुम नहीं मानती तो तेरी मर्जी। पार्वती गई, पार्वती गई तो पार्वती को बाजा बजाने का बड़ा शौक था। मृदंग ले गया कोई, किसी ने मृदंग, किसी ने तूल, किसी ने वीणा, उनके जो चेले चाटी थे भगत वो ले गए। पार्वती शिव जी के साथ जाती तो बड़ी शोभनीय होती। धर्म शक्ति के साथ अगर शिव है, शक्ति के साथ अगर ज्ञान है तो शोभा पाता है, नहीं तो अकेली शक्ति परेशानी पैदा करती। जयराम जी की जीवन में शक्ति चाहिए, लेकिन शक्ति के साथ ज्ञान होना चाहिए। जीवन में संग्रह हो, लेकिन संग्रह के साथ त्याग भी होना चाहिए। जीवन में मित्र हो, लेकिन मित्र की अनासक्ति का ज्ञान भी होना चाहिए। जीवन जीने की कला है ये, जब जीवन छोड़ना पड़े शरीर तो छोड़कर जीवन जिससे मिलता उस जीवन दाता को पहचान कर मुक्त हो जाए वो मर्द है।
करेगा तभी भी वो छोड़ेगा तो नहीं काल।
रो रो के देना, हंसते हंसते दे। लाचार होकर छोड़ना तो समझदार होकर छोड़। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। क्यों करे, कब तक करे।
जापान में एक संत हो गए जिनका नाम था मेइजी।
उनके शिष्य का नाम था क्योजी। क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागा की संत मेइजी के दर्शन करने गए। उसने अपने जो भी राज्यपाल का होता है लेटर वेटर शिष्य को दिया, बोले आपके गुरु को बोलो कि राज्यपाल मिलना चाहता है। क्यों चिले गया गुरुजी के पास अपना, राज्यपाल आपसे मिलना चाहता है। गुरुजी ने कहा राज्यपाल है तो क्या है, क्योटो राज्य का राज्यपाल है तो क्या है, मैं नहीं मिलता। उनको बोलो मेरे पास टाइम नहीं। गवर्नर को मानो किस थप्पड़ लग गई। अतिथि विशेष करके बुलाते वहां गवर्नर साहब नहीं जाते हैं, और संत मेजी के पास बिना बुलाए गए, और ये क्योची बोलता उनका चेला कि गुरुजी के पास टाइम नहीं। गुरुजी बोलते गेट आउट, व्हाट ही से, व्हाट ही थिंक इन हिज माइंड। थोड़ी देर तो उनके मन में जोश आया अपने अहंकार का, लेकिन सावधान हुआ क्योंकि संत का द्वार है। जयराम जी की, किसी की सात पीढ़ी बर्बाद करनी हो तो संत की निंदा करना उसको सिखा दो। जयराम जी की, सात पीढ़ी किसी की बर्बाद करनी हो तो उसको संत की निंदा करने में लगा दो। देर सवेर सात पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, और सात पीढ़ी आबाद करनी हो तो संत की श्रद्धा, संत में श्रद्धा और संत सच्चे ब्रह्म ज्ञानी का मंत्र दीक्षा दिला दो, सात पीढ़ी आबाद हो जाए। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक की पूजे न आश नानक, संत का निंदक सदा निराश। जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लते। ब्रह्म ज्ञानी की वाणी उस ब्रह्म परमात्मा को छू कर आती और हमारे कान पर लगती, हमें कितना फायदा होता है वो हमको पता भी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की निगाहें आध्यात्मिक व्यवस बरसाती, और ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में हमारे लिए कृपा बरस जाए तो कहना ही क्या है। क्योटो राज्य के राज्यपाल के अहंकार को धक्का तो लगा लेकिन वो संभल गया। गिरना असावधानी ही है लेकिन न संभलना महामूर्खता है। गाड़ी इधर उधर होती है लेकिन फिर आदमी संभाल लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर गिर मरता है। वो संभल गया कि कुछ भी हो संत है। एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, संत के सेवक को दिया और बोला गुरुजी को बोलना माफी दे, मैं क्योटो राज्य का राज्यपाल किटागा की नहीं हूं, पहले मैं इंसान हूं। जयराम जी की, राज्यपाल में बाद में हुआ हूं, पहले मैं इंसान हूं और उसके पहले मैं आत्मा हूं, और मैं उस परमात्मा को पाए हुए संतों के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पण करना चाहता हूं। इस आत्मा को तो परमात्मा पाया हुआ संत उंगली नहीं पकड़ेगा, तो हम लोग तो बच्चे हैं गिर जाएंगे, इसलिए महापुरुष की उंगली पकड़ने के लिए महापुरुष के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं, जरा अपने गुरुजी को ये मेरी चिट्ठी देना। संभल गया क्योची ने वो चिट्ठी जाकर संत मेजी को दी। संत मेजी ने कहा हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ये राज्यपाल नहीं है, क्योटो राज्य के राज्यपाल नहीं है, अब एक सेवक है, बुलाओ उनको, बुलाओ बुलाओ, उनसे तो मिलना चाहते हैं, वेलकम। मिले और बातचीत हुई, और बातचीत में संत जा क्या बोलेगा, घुमा फिरा के उस जिस शराबी जो बोलेगा तो नशे की बात बोलेगा। जयराम जी की, जुआरी क्या बोलेगा, शराबी क्या बोलेगा, व्यापारी क्या बोलेगा, जिसके पास जो वखर है छुपा है वही तो निकलेगा। उस महापुरुष की वाणी सुनकर सवा घंटे तक क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागा की चरणों में बैठे रहे। प्रणाम करके जब विदा हुए सवा घंटे के सत्संग के बाद क्योटो राज्य के राज्यपाल का कायाकल्प हो गया। धर्म का पहला पाठ पढ़ा श्रद्धा और नम्रता, और क्योटो राज्य के राज्यपाल के जीवन में ऐसा तो सत्संग का प्रभाव पड़ा कि कई राजा पैदा होकर मर गए जर्मन जापान में, उनका इतना यश प्रभाव और उनके जीवन में ऐसी माधुरिता नहीं थी जो संत के सत्संग के बाद उस क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागा की में आई। और किटागा की तो को तो पता भी नहीं था कि सैकड़ों वर्षों के बाद आशाराम बापू आएंगे धरती पर और लाखों करोड़ों लोग उनको सुनेंगे और मेरा नाम लाखों के सेटों में आएगा, ये उसको पता भी नहीं था जयराम जी की। लेकिन संत मेजी की शरण में गया भाई। बाला मर्दाना को पता था क्या कि उल्लासनगर में मेरे नाम का ऐसा नाम होगा, सारे देश भर में लोग हमको जानेंगे? नहीं, जो शाश्वत आत्मा है उसमें जो टिकता है उनका यह शाश्वत होता है, और ऐसे पुरुषों से जो जुड़ते हैं देवी कार्य में उनकी शांति और पुण्याई भी शाश्वत का रास्ता लेती है, दुनिया जानती। सम्राट अशोक कलिंग देश पर चढ़ाई किया, खप्पे 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 में कई कत्ले हुई, साइड पर देखने गए तो कई मुर्दे पड़े हैं। बरसात पड़ती है, बारिश की बौछार होती है तो छाता लेकर आदमी बच सकता है, लेकिन अंतर आत्मा की जब नालत बरसती है तो कोई छाता काम में नहीं आता है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। बारिश की बौछार से तो छाता तुम्हें बचा सकता है, लेकिन आप दुष्कृत्य करते हो और उसका जब देर सबेर फल आता है और व्योछार होती है नालत की, भीतर के अंतर आत्मा जब नालत बरसाता है तो वहां कोई छाता काम नहीं आता है। जयराम जी की। इसलिए कर्म करते समय ऐसी सावधानी रखो कि कहीं आगे चल के वो मेरा अंतर आत्मा मुझे नालत की व्योछार नहीं दे, अपितु तो धन्यवाद और सत्संग का प्रसाद दे, मैं ऐसे कर्म करूं मेरे प्रभु। बाहर की बरसात से, बाहर की व्योछार से तो छाता बचा सकता है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे दुष्कृत्यों का जब फल अंतर आत्मा तुम्हें नालत की बोछार से भिगाएगा तो तुम कहां जाओगे? अशोक को फटकार, नालत की बोछार से अंतर आत्मा तपने लगा। खोजते खोजते एक संत मिले, उपगुप्त। उपगुप्त की शरण जाने के बाद धीरे धीरे वो पाप कर्म दूर हुए और जीवन की राह मिली, जीवन जीने का ढंग मिला, और ऐसा जीवन जिया अशोक कि अभी भी अशोक का सिंबल भारत सरकार के रुपए पैसों पर आप और हम देख रहे हैं। जयराम जी की, सिंह का चिन्ह। एक बार अशोक के राज्य में अकाल पड़ा, जिनको राशन खरीदने की शक्ति है वो अमुक दुकानों से सस्ते दाम में राशन खरीदे, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल नाजुक है वे राजकोष से चलने वाले निःशुल्क फ्री राशन दुकान से राशन ले सकते हैं। अशोक समझ गया कि सब छोड़ के मरना है, जबरन काल छुड़ाए तो अभी से छोड़ना सीखो, गुरु का संग मिल गया था। जयराम जी बोलना पड़ेगा भाई। फ्री राशन की दुकान पर लंबी कतार, दुकान के नौकर देते देते थक गए, रात हुई, दुकान बंद किया। इतने में एक बुढ़ा आया, उसने अपनी चादर पसारी, बोले बाबूजी मेरे को मिल जाए राशन। बाबू ने कहा कि बाबा बुढ़ा चला जा, दिन भर हम थक गए, कमर टूटती, अब देर हो गई, दुकान बंद हो गया। इतने में एक युवक आया, युवक ने कहा कि ये बूढ़ा भीड़ के कारण दूर खड़ा था, झोंका आ गया, कल कब आएगा, कब मिलेगा, आज इसी को दे दो अच्छा रहेगा। जवान के कहने की बात कहने से ही पता चलता है कि आदमी का काम होगा कि नहीं होगा। कई लोग बात ऐसे करते कि काम होने वाला हो तो नहीं हो, और कुछ लोग ऐसी मधुर वाणी बोल देते हैं कि अपने तो अपने लेकिन पराये भी अपने हो जाते हैं। वाणी बोलने का भी एक सुंदर तरीका। अरे यार दे देनी यार तेरे बाप का और क्या जाता है। बोले मेरे बाप, अरे चलो रे बेटा, अरे यार देना मुझे मिठा। तो वही बेचारो बुढ़ो था यार आता। अच्छा भाव हल, वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे आप हूं शीतल होए। ये सासू बहू क्यों लड़ती है, देराणी जेठानी क्यों लड़ती है, भाभी और ननंद क्यों लड़ती है, बोलने की आइडिया नहीं है। जयराम जी बसता दे रहे धमाथम, वो हूं ना जो छोटो छिके, वो हूं ना जो छिके हूं, मां भी देसन मां भी सच्चे हन तो नखे जैसी मांड का ढांत मुझे न लोग नहीं नुआ चे के हिन्न ससु के भोलड़ी वांगुर न चाहे तो मुझो नालो भी ना। अरे ये छोटी करी भेण अद्दी अम्मा भलाई कंदे ता भलो तुंजो थींदो भलाई जा बाड़ा धनी तो खेदी। दूसरों को टोटे चबाने की अपेक्षा तू खीर खांड खिलाने की कोशिश कर। जो औरों को देता शक्कर है खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है बदों को बदी देख ले। इसे तू दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तेरा बेड़ा पार हो। आप जो भी कुछ देते हैं उधर जाके फिर आपके पास ही रहता है। गुलाब गुलाबी क्यों है, ये गुलाबी रंग देता है वापस इसलिए गुलाबी है। ये पुष्प सफेद क्यों है, इन्होंने सफेद रंग दिया है इसलिए सफेद है। ये पत्ता हरा क्यों है, इसने हरा रंग देना शुरू किया इसलिए इसके पास हरियाली रह गई। ऐसे ही जो नालत देता है उसके पास नालत ही बरसाने का वातावरण होता है। जो दूसरों को धोखा देता है उसको कोई ना कोई बड़ा धोखा देने वाला आ ही जाता है। और जो दूसरों को प्रेम और आनंद बांटता है ऐसे संत को करोड़ों लोग प्रेम और आनंद से नमन करते हैं और याद करते हैं। प्रत्यक्ष है जयराम जी की। अगर हम करते यूं अला बांधू बला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू कन्या मन्या कुर्र पई मुंजा चेला माता जो गुर्र दखना धर तू चाहे तर चाहे मर्र तो वो माधुर्य नहीं आता, वो आनंद नहीं आता। अगर किसी संत के रग रग में भरा है कि इनका मंगल हो इनका कल्याण हो, कौन सी बात से इनका जीवन उन्नत हो, एकांत में ध्यान करता है और संत सोचता है कि आज के समाज को क्या जरूरत है, वो खोज खोज के समाज को परोसता है तो समाज भी सोचता है कि मेरे संत का हम क्या काम करें, संत के लिए हम क्या करें क्या करें क्या करें। खोजते खोजते कोई सेवा खोज लेते हैं, अरस परस सहानुभूति की एक सुंदर सरिता बहती है और सब नहाते हैं और सब पावन हो जाते हैं। ये है सहयोग। दैत्यों ने ब्रह्मा को कहा कि ब्रह्मन हम सदा पहला दाव तो जीत लेते हैं आवेश में लेकिन फिर हम पिछड़ जाते। बोले तुम पहला दाव जीतते हो, तुम्हारे में प्राण शक्ति है और धड़ाका करते हो, आगे पीछे का सोचे बिना लड़ पड़ते हो, हिम्मत है। और देवता लोग लापरवाह होते हैं और विलासी होते हैं इसलिए पहला दाव तुम्हारा लग जाता है। लेकिन देवता लोग जब सज्जन लोग जब सतर्क हो जाते हैं तो फिर तुम पछाड़ खाते हो। सज्जन में सहयोगिता है। बोले लेकिन हर युग में भगवान जन्म लेते और हमारे ही टांग खींचते, देवताओं को हेल्प करते क्यों। ब्रह्मा ने कहा तुमको उपदेश की असर नहीं होगी, मेरे यहाँ डिनर पार्टी रखता हूँ जयराम जी की, भोजन समारंभ। भोजन समारंभ रखा गया और दैत्यों को पंगत में बिठाया। ब्रह्मा जी ने मनोवांछित जो दैत्यों को अच्छा लगे वो भोजन कराया, चरपरा ये वो तीखा तेज मसालेदार भोजन तो मन पसंद था। पत्तले में आ गई परोस दिया। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रो जब तक तुम पत्तल पे बैठे रहोगे तुम्हारी हाथ की कोनी सीधी ही रहेगी। संकल्प करके पानी छाट दिया। अब हाथ सीधा टाइट, अब भोजन उठावे तो मुंह में कैसे जावे, क्यों करे दाढ़ी को लगे तो कहीं आंख में लगे तो कहीं नाक के उस नथुनों में घुसे, हाथी हाथी मुसीबत हो गई उनके लिए। तो किया ना किया जैसा। अब देवता लोग बैठे, देवताओं को भी कहा कि तुम्हारी हाथ की कोनी नहीं मोड़ेगी। देवता लोगों ने क्या कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने उठाया सामने वाले के मुंह में रखा और सामने वाले ने आमने में रखा, आमने सामने सामने आमने, एक दूसरे को भर भर के पेट खिलाया।
पानी भी पिला दिया, मुंह भी पोंछ लिया एक दूसरे का। ब्रह्मा ने कहा देखो देवताओं में सहयोग है, सहायता है, इसलिए वे विजयी होते और पूजे जाते हैं, और तुम्हारे में टांग खींच के दादागिरी करने का है, इसीलिए तुम पछाड़ जाते। सिंधन में कई गुणन पर ज्वारी अटो अल्लाह अणी, दस मन दूध हो लेकिन चुटकी भर टाटरी डालो दूध फट जाता है। जयराम जी की, दस मन मीठी सुंदर मिठाई हो लेकिन चुटकी भर जहर डालो मिठाई बिगड़ जाती है। ऐसे और सब आइडिया है, लेकिन थोड़ा सा जो फूट है वो हणी कम खराब कर चले। जयराम जी की, ज्वर जे अटे में हाण मैदो मिलायो बस, कुछ भी आए सिंधी आए ना यार, कुछ भी आए पैंज भाई यार। दूसरी बात, जिस किसी को तुम सुधारना चाहते हो, अपना बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, पड़ोसी हो, उसके दुर्गुण दिखाकर, उसको डांटकर, नीचा दिखाकर उसको उपदेश दोगे तो वो सुधरेगा नहीं और बिगड़ेगा। लेकिन तुम सुधारना चाहते हो बेटी बेटा और कुटुंबी को, तो भले उसमें कोई दोष है हम मानते हैं, मेरे में भी दोष है जयराम जी की, होंगे नहीं कई दोष है मेरे में। लोग बोलते हैं भाई मुंह में भी कुछ दोष हुंदा हुंदा छा जो एन जयराम जी की, कुछ ना कुछ दोष है तभी तो शरीर टिका, नहीं तो ब्रह्म में लीन नहीं हो जाते। नारायण हरि नारायण चाहो ना यार, रूबरू मोगा थी बैठाया हो, नारायण हरि नारायण, मायू भी चमन मावा भी चमन, नारायण हरि नारायण हरि। एक आदमी ने सुना कि दिल्ली में जेब कतरे बहुत हैं। उसने देखा जेब कतरे तो क्या, मेरा क्या करते, मैं देखता हूं मेरी जेब कैसे काटते। उसने वो चूरण वाले से नकली नोटें ली, नकली नोटें, ओ सौ सौ की, पांच पांच पैसे में 100 रुपए की नोट, 10 पैसे की 3 50 की नोट, 25 पैसे में 500 की नोट। उसने तो महाराज कई 1000 रुपए बना लिए 2 4 रुपए में ही, समझ गए, नकली नोट जेबों में डालकर जहां जहां जेब कतरे हो सकते थे, सिनेमा थिएटरों पे गए, चांदनी चौक भीड़ भड़ाके में गए, रेलवे स्टेशन पर गए, एयरपोर्ट पर गए, टिकट बारी पर गए, सारी दिल्ली छान मारी जहां जेब कतरे हो सकते थे। और कभी कभी तो वो सज्जन क्या करे कि जहां भीड़ हो तो अपना यूं करके खीसा, भाई भले कोई जेब काटे, यूं करे यूं करे। लोग बोले ये कहां का डांसर आया है। जयराम जी की, दिन भर घूमा, रात को आया देखा पेंट में हाथ डाल के, आहा सुभान अल्लाह, सारे नोट उतने के उतने, नकली नोट भी नहीं कट रहे तो असली क्या कटते। ऐसा करके उसने फिर जेब में हाथ डाला, एक चिट्ठी निकली, चिट्ठी में लिखा था पैंट पहनने से कोई बाबूजी नहीं हो जाता है और नकली नोट रखने से कोई सेठ जी नहीं होता है, असली रखते तो हम भी हाथ मारते और अपना काम करते, तुम्हारा प्रिय मित्र जेब कतरा। अब तो जयराम जी चौनी पौनो यार, नकली नोट पेंट पहनने से कोई बाबूजी नहीं हो जाता है, नकली नोट रखने से कोई सेठ जी नहीं हो जाता है, ऐसे ही इस हाड़ मास के शरीर को मैं मानने से कोई महात्मा नहीं हो जाता है, और परिस्थितियों में गुलाटियां खाने से कोई बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान तो वह है कि परिस्थितियां बदलती है, दिन भी बदला, रात भी बदली, सुबह भी बदला, शाम भी बदली, बचपन बदला, जवानी भी बदली, बुढ़ापा भी बदला, सुख भी बदला, दुख भी बदला, मित्र भी बदले, शत्रु भी बदले, सासू भी बदले, बहू भी बदले, ननंद भी बदली, भाभी भी बदली, ये जग है अदला बदली का मेला रे, एक चेतन न है ना बदला, वही है सदा सुहेला। लगी हो वही तक कल पवई न तो पुछ लगी वार, कोई न कोई सत्कर्म तुम्हारा उस परमेश्वर को पसंद पड़ गया है, वो परमेश्वर को तुम्हारा कोई शुभ कर्म पसंद पड़ गया है,
चाहे फिर माँ की सेवा की हो, बाप की हो, पड़ोसी की हो, गरीब की हो, किसी संत के, सच्चे संत के कान में दो वचन सुने हो, कोई न कोई तुम्हारा ऐसा शुभ कर्म है जो अंतर्यामी को पसंद पड़ गया है, इसलिए वो अंतर्यामी तुम्हारे दिल में प्रकट होना चाहता है, और यही कारण है कि तुमको सत्संग में रुचि मिले, ताकि देर सवेर वो प्रकट हो सके। पापी आदमी सत्संग नहीं सुन सकता है, अगर वो सुनने बैठ जाए तो पाप उसके टिक नहीं सकते। तो लाइव प्रोग्राम तो सुनेंगे, घर में भी बुद्धन ना हूं शाबस हो जाए, न था बुद्धन होने का बुद्धन वारण के शाबस हो जाए। जो नहीं सुनते तो सुनने वालों को धन्यवाद है, लेकिन उसकी अपेक्षा जो चार कदम चलकर आते हैं, कुछ कठिनाइयां सहते हैं, उनके सुनने का मजा कुछ निराला ही होता है। जय राम जी। नारायण हरि नारायण। चौ न मुयू मायू भेजू चौ न मावा भी चवन मायू भी चवन। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। भगवान कपिल कर्दम के घर अवतरित हुए ब्रह्मा जी ने स्तुति की, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु अब हम जाते हैं। कपिल भगवान ने कहा कि जीवन में त्याग का सामर्थ्य जिसको नहीं है उसका जीवन तो पशु से बदतर है। आपके अंदर त्याग का सामर्थ्य है, ये लो और त्यागो, यही तो प्रकृति का नियम है। आप भले जाओ मुक्ति के रास्ते। कर्दम ऋषि चले गए एकांत में, अपने श्वासो श्वास में अजपा जाप करते उस ब्रह्म स्वरूप में टिके। ये शरीर पंचभूतों का है, मन प्रकृति का है, बुद्धि बदलने वाली है, जो अबदल आत्मा है सो हम शिवो हम, ब्रह्म ज्ञान में टिक गए। देवहूति ने कपिल भगवान को कहा कि मैं कैसी, मैंने भी अपना अमूल्य जीवन संसार के अनुभव में, संसार के विकारों में, आंखों को कितना भी देखा है लेकिन शांति नहीं मिली, नाक को कितना भी सुंघाया परम शांति नहीं मिली, कान से कितनी भी ताकड़ धिनाधिन धूल धमाका कया फिर भी शांति नहीं मिली, शरीर से कितना भी विकारी सुख लिया कोई शांति, जिंदगी अब चली गई, आसक्ति बड़ी पाश है। कपिल भगवान कहते कि आसक्ति बड़ा बंधन है, लेकिन वही आसक्ति माता, वही आसक्ति अगर संत के चरणों में आ जाए तो मुक्ति भी हो जाती है। आसक्ति तो है लेकिन संत के चरण में लगा तो बस मुक्ति दायिनी। माँ को उपदेश किया कपिल भगवान ने, और माँ देवहूति ने अपनी इंद्रियों को, मन में मन को, बुद्धि में बुद्धि को, अपने साक्षी ब्रह्म स्वरूप में लगाकर आत्मज्ञान का खजाना पाया। हर्ष से हर्षित हुई, आनंद के दो आंसू गिरे, वो दो आंसू गिरे और जहां सिद्धि मिली वो गुजरात में सिद्धपुर तीर्थ क्षेत्र है, और बिंदु सरोवर माँ के बिंदु जहां गिरे थे हर्ष के, वो बिंदु सरोवर आज भी खबर देता है कि भारत की नारी केवल खा पी कर जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, अपितु जीवन में शाम हो जाए जीवन की, उसके पहले जीवन दाता को पाने के लिए भारत की नारी का लक्ष्य होता है। भगवान कपिल ने भी वो आश्रम छोड़कर, मिलता है त्यागने के लिए उसका अनुभव किए, चलते चलते कलकत्ता पहुंचे। समुद्र ने उनका स्वागत किया और समुद्र ने हटकर उस योगेश्वर के लिए जगा दी। आज भी 14 जनवरी को समुद्र, जिस दिन कपिल वहां गए थे समुद्र हट गया था उनके स्वागत के लिए, उन्होंने समुद्र ने धरती दे डाली, आज भी हर 14 जनवरी को गंगा सागर में मेला लगता है और वो समुद्र उस दिन उस जगह से हट जाता है और लोग कपिल के जगह पर प्रणाम करने जाते हैं। ये है ब्रह्म ज्ञान की महिमा अपरंपार। तुम्हारे में कितनी योग्यता है तुम्हें पता ही नहीं, वटवृक्ष के बीज में कितने वटवृक्ष छुपे हैं उस बेचारे को पता ही नहीं, बीज में कितने वृक्ष छुपे हैं कोई विज्ञानी नहीं बता सकता है, ऐसे जीव में कितनी जीवनदाता की शक्तियां छुपी है कोई नहीं बता सकता है, कोई विरला संत है इशारा करता है, और यात्रा आप करते तो आपको पता चलता कि हल बहना यार एडो मजो यार एडो, अभी तो और भी कुछ है, नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले, आपकी नजर बदल दो निजारे बदल जाएंगे।